اب یہاں سے آگے حضرت مریم کا وہ قصہ ہم سورت آل عمران میں بھی پڑھ چکے، لیکن یہاں اس میں سے ہم عمل کی کچھ اور چیزیں نوٹ کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مریم جس کے نام پہ آج اپنے آپ کو جوڑنے والے حیا سے خالی دکھتے ہیں بعض اوقات، اور انہوں نے ہر اس چیز کو اپنے دین میں جگہ دے دی جو کہ ان کے خیال میں ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تھی. لیکن حضرت مریم علیہ السلام کیسی تھی، پیچھے ان کی وہ کہانی ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے باپ کے انتقال کے بعد یہ حضرت زکریا کی کفالت میں آ گئیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے ہی اپنے لیے چن لیا، جیسی ماں تھی ویسا ہی بیٹا ملے گا. تو آیت 16 سے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم، اور اب ذکر کیجئے اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا. کیا ہوا؟ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی گوشے میں جا بیٹھی. حضرت مریم علیہ السلام کی آزمائش دوسرے انبیاء کرام سے بہت مختلف تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سورت مائدہ میں کہا کہ یہ صدیقہ تھی. تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مریم صدیقہ تھی، لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبیہ تھی. لیکن جو بھی تھی، اللہ نے ان کی آزمائش بہت سخت کی، اور عورت کی بہت بڑی آزمائش اس کا ویک پوائنٹ اس کی عصمت ہے، عزت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کے معاملے میں آزمایا، اور یہ بچپن ہی سے پاک دامن بھی تھی، اور جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے کہ ان کے لیے حجرہ بنا دیا گیا تھا، محراب نام سے پڑھا پیچھے ہم نے، کہ جہاں یہ عبادت کرتی تھی. لیکن ایسے ہی وقت جب کہ وہاں فرشتہ آیا، یہ سارا منظر پیچھے گزر چکا ہے، یہاں براہ راست اب ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیلیوری کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ حضرت مریم جب اذن تبزت، جو ان تبزت ہے نا، یہ نبزہ سے ہے. اگر آپ پیچھے بھی یاد کریں تو یہ لفظ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، پھینکنے کے لیے کہتے ہیں. نبز فریق منہم، پہلے ہی پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو ان چیزوں کو پھینکتا ہے. تو جب کوئی چیز پھینکی جاتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے نا، تو وہاں ٹوٹنے کا معنی تھا. یہاں اس سے مراد ہے الگ ہو جانا، یعنی بہت دور چلی گئیں اپنے گھر والوں سے. مکانن شرقیہ، مشرقی گوشہ، کس کا؟ بیت المقدس کا. یہی وجہ ہے کہ آج حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، یعنی عیسائی کہلوانے والے لوگ، یہ بیت المقدس کی مشرقی سمت کی طرف منہ کرتے ہیں عبادت کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہاں جا کے بیٹھ گئیں، اور گویا کہ یہ اعتکاف کی کیفیت تھی یا عبادت کی تھی یا کیا تھا. پھر کیا ہوا؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا. کن سے؟ لوگوں سے، آئسولیشن، کیونکہ بہت زیادہ سوشلائزنگ کرنے سے پھر اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں ملتا. دل تو دنیا کے رونقوں اور میلوں میں اٹکا رہتا ہے، تو لہٰذا یہ لوگوں سے الگ ہو گئی، خلوت کا ماحول بنایا تاکہ یکسوئی سے اللہ کی عبادت کرے. کیا ہوا؟ فرسلنا الیہا روحنا، پھر ہم نے بھیجا ان کی طرف اپنا ایک فرشتہ. روحنا کیوں کہا؟ کیونکہ جبرائیل آئے تھے ان کے پاس، اور روح بمانی فرشتہ ہے. یہاں فرشتے کے پھونکنے سے بچے میں روح پڑتی ہے، اس لیے ان کو روح کہا گیا. فرشتوں کے لیے پیچھے ابھی ہم نے یسلون کا نے روح میں بھی دیکھا تھا کہ جبرائیل کا نام بھی روح ہے، تو وہی بھی روح تھی، قرآن بھی روح ہے، روح انسانی بھی روح ہے. تو گویا کہ ان کے پاس ایک فرشتہ آیا، پر آیا کس صورت میں؟ فتمثل لها بشرا سویا، تو اس نے صورت اختیار کی اس مریم کے سامنے ایک مکمل انسان کی. یعنی فرشتہ اپنی اصلی شکل میں نہیں آیا، کیونکہ اگر وہ آئے گا بھی تو پہچانا نہیں جائے گا. تو گویا کہ تمثل کا معنی کیا؟ صورت پکڑنا، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں روپ دھارا. تمثل سے ہے یہ لفظ، تمثال، تمثیل، مثال، وہی لفظ ہے یہ، کہ فرشتہ انسانی روپ میں آیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی فرشتہ جب آتا تھا تو انسانی روپ میں ہی آتا تھا. داہیا قلبی صحابی تھے جن کی شکل میں عموماً آتے تھے جبرائیل علیہ السلام، اور عموماً نبیوں کے پاس فرشتے انسانی روپ میں آتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو اصلی شکل میں دیکھنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے. صرف دو دفعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پورے اپنے نبوی دور میں دو یا تین دفعہ جبرائیل کو دیکھا. خیر، اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتہ انسان نہیں ہے، دیکھنے میں تو وہ انسان ہی لگ رہے تھے. تو فوراً بولی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک، مریم نے کہا کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے. ان کنت تقیہ، اگر تم کوئی متقی شخص ہو. یعنی ایک مرد اچانک کسی کو اپنی تنہائی میں دیکھنا، شریف لڑکیاں تو پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ میرے پاس کیوں آیا. تو آتے ہی جو بات ان کے منہ سے نکلی، یہ ان کے دل کی پکار تھی، اعوذ برحمان منک. जो बच्चियां बचपन से अपनी निगाहों को पाक रखती हैं और लड़कों के साथ अकेले बैठने, उनसे बातचीत करने, उनके साथ एंजॉय करना, वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। पहले दौर में तो आप जानते हैं कि शादी के बाद औरतें कई कई साल और महीने गुजर जाते थे कि हया की वजह से। अब हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे कि जायज़ है कि ना जायज़ है कुछ है, लेकिन एक बाइस्मत बच्ची कभी भी खलवत में किसी मर्द को देखकर मुतमईन नहीं रह सकती, चाहे वो फियांसी हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि इंसान को ये पता है कि जब शैतान इंसान के पास आता है, यानी शैतान सबसे ज्यादा उस वक्त खुश होता है जब एक औरत और एक मर्द अकेले हों। तो लिहाजा यहाँ उन्होंने पनाह मांगी और साथ ही कह दिया कि देखो अगर तुम मुत्तकी शख्स हो तो अल्लाह की पनाह, यानी तुम इस तरफ मेरी तरफ कोई बुराई का इरादा ना करना। इससे हजरत मरियम का किरदार नजर आता है। आप देखिए कि हया एक औरत को स्ट्रोंग करती है। हदीस में आता है कि जिस चीज में हया होगी वो उसको सजा देगी, खूबसूरत कर देगी, और जब किसी चीज से हया उठ जाए तो वो जो चाहे वो करे, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो बच्चियों के अंदर हया का मादा बहुत ज्यादा होना चाहिए। हम सोचते हैं कि हया का ताल्लुक सिर्फ औरत से है, इसीलिए जब कोई मर्द जरा सा शर्मीला हो तो कहते हैं तुम क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। गलत बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हया वाला कोई भी नहीं था। हजरत उस्मान के बारे में आपने फरमाया, उस्मान तो वो हैं जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं। इनके आने पे तो अल्लाह के नबी उठ के बैठ गए थे एक मौके पे, जबकि दूसरे सहाबा की मौजूदगी में आप इसी तरह बैठे रहे कि आपके टांग से थोड़ा सा कपड़ा हटा हुआ था। तो हया पैदा करनी चाहिए, और मुसलमान औरत के अंदर जितनी हया ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसकी गोद से जो बच्चा पैदा होगा और जिसको वो पालेगी वो भी बाहया होगा। आज हया को फिल्मों से दिखाकर और ही बेवकूफ़ी का तासुर दे दिया, कांपना हांपना हलकाना और इस तरह से झूमना झामना और कहना कि ये हया कर रही है, ये गलत तसव्वुर है। फिर जब पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं वो तो ऐसी हया पसंद नहीं करती, वो कहेंगी हीरोइन तो इतनी बेवकूफ़ लग रही थी, हाँपती भी, चलो हम हया नहीं करते। एक तरफ इस तरह का तसव्वुर है और दूसरी तरफ बोल्ड बनो, कुछ भी नहीं, लड़के और लड़की में कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। तो यहाँ ये बात हम सब के अमल की है कि अपने अंदर भी और अपने बच्चों अपनी नस्लों के अंदर हया खत्म नहीं करनी चाहिए। और याद रखिए ये कोई बड़े होकर या जवान होने पे देने वाली चीज़ नहीं है, इसका ताल्लुक बचपन से है। एक आम सी बात जो अमूमन माओ में देखी है, नासमझी से करती हैं बेचारी, पता तो उनका नहीं, क्योंकि बच्चे सबको लगता है कि बच्चे ही हैं, तो वो बच्चों को दूसरों के सामने चेंज करने लग जाती हैं, फारिग कर देंगी, दूसरों के सामने फीड करना शुरू कर देंगी, बच्चे के ऊपर इसका असर पड़ता है। आप देखिए छोटा बच्चा जो है ना वो एकदम अपनी टांग सुकेड़ता है जब कभी आप दूसरों के सामने रखते हैं। जो काम कल बच्चों से सामने नहीं करवाने या दूसरों के सामने नहीं करवाने बच्चों से, वो बचपन से ही ना करें। इसी तरह बाज लोग बाथरूम में अपने साथ ले जाते हैं बच्चों को, अंदर जाके बोलना शुरू हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना चाहते हुए भी असर डालती हैं। एक तो आज मीडिया ने इस तरह से मुश्किल डाल दी कि हर चीज़ बच्चों के लिए आम हो गई, तो बचपन से ही इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चे जब 7-8 साल के होने शुरू हो जाएं लड़के, तो उन्हें कहें कि नजरें झुका के बात करो, और इस उम्र में तो और ही ज़्यादा आंखें खोल खोल के देखते हैं, बाज माँ को भी देखना तो यूं आंखें खोलते हैं। तो जो माँ अपने बच्चे और अपने बच्चे से खुद को या बहन के लिए भाई की आंखें झुकवा देगी, वो बाहर भी इंशाल्लाह इस तरह की खराबियां नहीं पैदा करेंगे। तो बहरहाल हजरत मरियम के नाम के साथ जुड़ने वाले लोगों के लिए इसमें मैसेज है कि वो तो अकेले में एक मर्द को देख के बर्दाश्त ना कर सकी, फिर आज कैसे बॉयफ्रेंडशिप और गर्लफ्रेंडशिप है। ऐसे लगता है कि ये क्रिश्चियनिटी का हिस्सा बन चुकी है चीज, लेकिन हजरत मरियम तो ऐसी नहीं थी। चलिए इनको तसल्ली देने के लिए फरिश्ते ने जो कहा वो सुन लीजिए और देखिए कि उससे वो और भी परेशान हो गई होंगी। आयत 19, काल इन्नमा अना रसूलु रब्बिक, तो उन्होंने कहा मैं तो आपके रब का भेजा हुआ हूँ, क्यों आया हूँ, ली अहवला की गुलामन ज़किया, ताकि मैं आपको एक पाकीज़ा अता करूँ। अब ये बात तो वो कहना चाहिए कि और भी उसके ऊपर बोझ पड़ गई, कि पहले तो वो सिर्फ एक मर्द की तन्हाई से घबराई और अब कह दिया कि बच्चा पैदा होगा, तो इस पे तो हजरत मरियम खामोश ही ना रह सकी। कालत अन्ना यकून ली गुलामन, मरियम ने कहा मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा, वलम यमससनी बशर, जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं, वलम अकुबगिया, और ना ही मैं कोई बदचलन औरत हूँ, यानी मेरे अंदर तो ऐसी कोई बुराई नहीं है। यहाँ से आप देखिए कि बीबी मरियम ने इसबाब को सामने रखा कि रियलिटी में इसबाब ही होते हैं तो भी होता है, क्योंकि उससे पहले तो कोई मिसाल भी नहीं थी कि हजरत मरियम के हाँ बच्चा जैसे पैदा होने वाला है, इस तरह की कोई बात सुनी नहीं थी उन्होंने, तो उन्होंने फौरन इसबाब की बात की। दूसरी बात देखिए कि इन जुमलों में फरिश्ते का ये कहना कि मैं तुम्हें बेटा अता करूंगा, तो क्या फरिश्ते बेटे दे सकते हैं? फिर बेटे फरिश्तों से मांगे? नहीं, फरिश्ते अल्लाह की आर्मी हैं, फौज हैं, जो काम भी दुनिया में होता है फरिश्तों ही के जरिए से होता है, अल्लाह ताला से लेकर देंगे वो, ये नहीं कि फरिश्तों से मांगना शुरू कर दें। और साथ ही ये कहा कि मैं बहीजन नहीं हूँ, बदचलन औरत नहीं हूँ। इससे भी एक चीज़ पता चलती है कि जिसके अंदर हया होती है या जो गलत काम नहीं करता, वो हर मुमकिन तरीके से अपना दिफा करता है। दाल में कोई काला होगा तो खामोश हो जाएगा। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि इंसान को अपना उज़र रफा करना चाहिए। अगर एक बच्ची गलत काम नहीं करती, गलत नहीं किया उसने, तो वो पूरे यकीन के साथ, जुर्रत के साथ कहेगी, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। फरिश्ते का जवाब सुनिए आयत 21, काल कजालिकी, उस फरिश्ते ने कहा ऐसा ही होगा। यहाँ कजालिकी से क्या मुराद है? कि मर्द के ताल्लुक के बगैर अल्लाह आपको बेटा अता करेगा। काल रब्बू की हुआ लई हैय्यन, कहा तो आपका रब फरमाता है कि मुझ पर ये बहुत आसान है। असल ये बात थी, अल्लाह अपनी कुदरत दिखाते हैं। वली नज अलहु आयत लिन्नासी, ये दूसरी बात है, नंबर 2 लिख ले। कल सवाल आ सकता है कि हज़रत ईसा की पैदाइश में क्या हिकमतें थी। तो पहली बार अल्लाह सुब्हान तआला ये दिखाना चाहते थे कि मेरे लिए ये बहुत आसान है, आई कैन डू इट। दूसरा, वली न जला हुआ आयत लिन्नास, हम लोगों के लिए इसको निशानी बनाएंगे। और तीसरी बात, रहमत मिन्ना, और रहमत अपनी तरफ से। ये कौन सी रहमत है? वो काम जो आगे जाके हजरत ईसा से अल्लाह लेने वाले थे। अब आप देखिए कि बीबी मरियम पे तो पहाड़ टूटा है गम का, और अल्लाह उसको रहमत कह रहे हैं। आपको सहाबे कहाँ याद आए? गार में निकले, घर बार छोड़ा, और अल्लाह ताला कहते हैं कि उन पर रहमत नाजिल कर दी, और वो भी दुआएं मांग रहे हैं कि वह ये लना में नौरी ना रशदा। तो क्या पता चला कि बस दफ़ा अल्लाह ताला छोटी छोटी मुश्किलात में डालकर इंसान को बहुत बड़ी रहमत देना चाहते हैं। और चौथी बात, के वकान अमरम मकदीजा, और ये एक तयशुदा अमर है, ये तो हो के रहेगा। अल्लाह इस बच्चे को मोजज़ा और अपनी रहमत का जरिया बनाने का फैसला कर चुके हैं। फिर बाद में अल्लाह ने इसी बच्चे को आसमान पे उठाना है, और इनकी शख्सियत में वो गैर मामूलीपन था कि जो उस दौर से लेकर आज तक लोगों के लिए हैरत का बायस है। तो गोया कि एक बच्चे की तख्लीक से अल्लाह ताला ने 4 मुख्तलिफ काम लिए। और यहाँ ये भी तो पता चल गया ना कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो होता है, जो करना चाहता है वो होता है। और आप देखिए कि यहाँ एक बात पता चलती कि इतनी पाक दामन औरत थी, उस पर भी तोहमत लग गई, लेकिन चूंकि वो सच्ची थी तो अल्लाह ताला उनकी तोहमत से उनको बेन्याज कर देगा। तो कभी भी किसी के बारे में प्रोपेगंडा सुने, किसी के बारे में बुरी बात सुने, तो मत सोचिए कि वो बुरा ही होगा या वो औरत या वो लड़की बुरी होगी। थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, अमूमन इंजाम बता देता है कि कौन हक पे था और कौन बातिल पे था। हम जल्दबाज लोग होते हैं ना, ज़रा किसी की बात सुनते हैं तो उछालना शुरू होते हैं, देखा ये सुना है, देखा ये है, ये वैसी बात है, ये इस तरह की बात है। तो गोया कि अल्लाह ताला ने यहाँ हमें इस बात को बता दिया। ये सारा मंजर हो गया, और यहाँ ये जो दूर का मुकाम है, इससे मुराद बैत लहम भी है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम यहीं गई थी हज़रत ईसा की पैदाइश के लिए। तो अब अल्लाह ने बीच की सारी बातें ख़त्म की। ये कैसे हुआ? वैसे ही हुआ जैसे एक बच्चा माँ बाप के ज़रिए पैदा होता है। हम सुन चुके हैं कि किस तरह एक बच्चे की पैदाइश एक नामुमकिन काम है, और कितनी गलतियां लग सकती हैं, कितने अब नॉर्मल बच्चे पैदा हो सकते हैं, वो नहीं होते। तो इसी तरह अकेली औरत बच्चा पैदा कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता, सीधी सी बात है, क्योंकि उसके जिस्म के अंदर वो चीज़ नहीं। और यहाँ आप उस जुमले को भी याद करें जो सूरह आले इमरान में पढ़ चुके कि लैसा ज़करु कलुंसा, बिल्कुल वही जुमला है कि मर्द लड़की जैसा नहीं हो सकता। मतलब ये कि लड़की तो अकेली बच्चे को पैदा कर सकती है, लेकिन बाप अकेला बच्चे को पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जिस्म में वो सारी मशीनरी नहीं। आज भी आप देखिए कि जिनके बच्चे नहीं होते, तो बाज़ दफ़ा लोग टेस्ट ट्यूब के नाम पे, बाज़ दफ़ा कुछ इस किस्म के इलाज होते हैं कि मर्द का जो मामला है वो जिस्म से बाहर ही हल करके सिर्फ उस जाइगोट को माँ के पेट में रखते हैं और बच्चा पैदा हो जाता है। तो औरत का सिस्टम तो पूरा, सिर्फ उसको एक बीज की ज़रूरत थी जो अल्लाह ताला ने किसी भी जरिए से दिलवा दिया। खैर हुआ क्या? फहमलत हो, तो इसने इस बच्चे का हमल उठा लिया, हामिला हो गई। हमल कहते हैं वो बोझ जो खुशी से उठाया जाए। पेट के और दरख्त के फल के बोझ को अमूमन हमल कहते हैं। हमल इसका ऑपोजिट है जो कमर पे उठाया जाता है। आप देखिए कि औरत बच्चे का वजन उठा उठा के फिरती है, उसको थकन भी नहीं होती। अमूमन जब कोई बच्चा पैदा होता है तो 8-9 पाउंड का तो होता ही है ना, किसी को कहा जाए 8 पाउंड घी का डब्बा उठा उठा के फिरो 24 घंटे, सोना भी उसके साथ ही है, इम्पॉसिबल लगता है, थोड़ी देर में इंसान थक जाता है, लेकिन एक बच्चे को माँ कैसे हल्के हल्के उठा के फिरती रहती है, तो ये खुशी का बोझ होता है। लेकिन मरियम के हालात को सोचिए कि उनके तो दिल पर एक एक दिन के साथ क्या क्या सदमे टूट रहे होंगे, लेकिन अल्लाह का हुक्म था। जैसे हजरत मूसा अलैहि सलाम को कहा कि असा पकड़ लो तो पकड़ लिया, असा छोड़ दो छोड़ दिया, सांप पकड़ लो पकड़ लिया, तो अल्लाह के फैसलों को कबूल कर लिया मरियम ने। अब हुआ क्या, वक्त आ गया पैदाइश का, फन तबज्जत मबीही मकानन कसिया, चुनाचे वो इसको लेकर एक दूर की जगह पे चली गई। ये मकानन कसिया जो है ये बैतुल लहम है। अब डर क्या था कि हमल बढ़ेगा, लोग देखेंगे, पता चलेगा क्या, तो तन्हाई की गर्ज से बैतुल लहम चली गई, और ये हैकले सुलेमानी से 8 मील के फासले पर है तन्हाई में। इससे ये भी एक इशारा मिलता है कि ऐसे दिनों में औरतों को बाजारों में नहीं फिरना चाहिए, ऐसे जिस्म के साथ कि हर बंदे को पता चल जाए कि औरत प्रेग्नेंट है। पहले ऐसे ही होता था, अब तो जब से न्यू बॉर्न बेबीज की चीजें ईजाद हो गई, आखिरी वक्त तक माएँ खुद शॉपिंग करती दिखती हैं। और सोची कि हया कैसे बंदे को इस चीज़ पे माइल करती है, कोई सोच सकता है कि इस तरह के हालात में आए। लेकिन आज तो बच्चों को भी पता होता है और बड़ों को भी पता होता है, और बाज़ बच्चे अपने साथ इस तरह के चीज़ें रख के तो वो बन के दिखा रहे होते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से एक जगह बच्चों को देखा था, खेल रहे थे तो ऐसे ही कोई बॉल सा पेट पे कमीज के अंदर रख के, तो मेरा बच्चा जो था वो दिखा रहा था कि मेरे पेट में बेबी है। वल्लाह ही मैंने खुद देखा, छोटे बच्चे थे खेल रहे थे, उनको किसने बताया? हम तो इतने अक्लमंद नहीं थे अपने वक्त में, हमें तो ये पता चलता था कि बच्चा आ गया, कहाँ से आ गया किसी को पता ही नहीं होता था। यहाँ से बल्कि ये भी एक इशारा मिलता है कि सेक्स एजुकेशन के बारे में जब हम बहुत ज्यादा बच्चों को वक्त से पहले बताते हैं उसका भी नुकसान होता है, और जब माएँ बिल्कुल नहीं बताती और वो सहेलियों से की की करके सुनती हैं तो वो उसका भी नुकसान होता है। तरीका क्या है कि जब किसी चीज़ का वक्त करीब है, आपको लगता है कि अगले को जरूरत पड़ सकती है अब इस चीज़ की, तो उससे कुछ अर्सा पहले अच्छे तरीके से मौसम से खुद ही बता दें, ताकि ना उनको दूसरों से पूछना पड़े और ना उसको गलत रंग ले जाएं। और ये भी बिल्कुल ऑपोजिट है कि आप 7-8 साल की उम्र में बच्चे को पूरा डिलीवरी का प्रोसेस दिखा दें और कहें कि अब देख लिया तो बस आपके लिए इतना ही काफी है, वो काफी नहीं होता, फिर उसके असरात जो है वो दिखते हैं। खैर, अब वो वक्त आ गया, I-23, फअजाहल महाद इलाजिस नखला, फिर ले आए इसे दर्दे जह एक खजूर के तने के पास। ये लफ्ज जो महाद है ना, पीछे कहाँ पड़ा है अपने, यसलूनका अनिल महीद, हैस का लफ्ज भी इसी से ही है, तो महाद कहते हैं, महाज कहते हैं दर्दे जह को। कहाँ ले गया उसको, हा से मुराद मरियम है, किधर ले गया, जिस इन, जिस कहते हैं तना, जैसे खजूर का तना होता है ना नीचे कच्चा सा, टहनी शाख या तना, उसी तरह का नखला खजूर का दरख्त, यानी खजूर के तने के पास उसको ले आया। यानी विलादत के वक्त जब दर्द की शिद्दत बढ़ी तो हजरत मरियम ने सहारे के लिए खजूर के तने को मजबूती से पकड़ लिया। ये दर्द को बर्दाश्त करने का एक नेचुरल तरीका भी है। इसी से आज अमल की बात निकलती है कि अगर औरत डिलीवरी के वक्त किसी चीज को मजबूती से थाम ले तो इसमें दर्द को बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा होती है। कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, इस कैफियत में उसने कहा काश मैं इससे पहले मर चुकी होती, वकुंतु नस्यं मंसिया, और एक भूली बसरी चीज हो चुकी होती। हजरत मरियम ने ये क्यों कहा, क्या मौत की बात की, क्या औरत को या मर्द को मौत की दुआ कर लेनी चाहिए? तो देखिए, ये मौत की बात नहीं है, या हजरत मरियम खुदकुशी नहीं करना चाह रही थी, या हजरत मरियम का ये ख्याल नहीं था कि इस वक्त से पहले ही मर जाऊं, ना ये दुनिया के गम से थी, बल्कि ये मौत इस बात पे थी कि लोग मेरे दीन को बदनाम करेंगे, हो सकता है लोग मुझे ताने दें और मुझसे सब्र ना हो और मैं कुछ और कर दूं, तो गोया कि ये तो वो ख्वाहिश है जो उस वक्त हर औरत ही करती है, क्योंकि कहते हैं कि उस वक्त औरत जिंदगी से ज्यादा मौत के करीब होती है, तो दर्द की शिद्दत से ये निकलने आम बात है। और साथ साथ आप देखिए कि आम तौर पे जब औरतें बच्चे को डिलीवर करती हैं, तकलीफ कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन दो जज्बे तो दिल में होते ही हैं, एक तो बच्चे की पैदाइश की खुशी, और साथ ही घर वालों के अंदर जरा एक इंसान का रोब भी पड़ना लगता है, उसको थोड़ी ऑनर भी मिलने लगती है। अकेली बहू ऐसे ही फिरती रहे तो उसको कोई अहमियत नहीं देगा, और वो आपके बच्चे को उठा ले तो आपको उससे ज्यादा बच्चे की फिक्र लगती है, उसको भी इसीलिए कहते हैं खाओ पियो ताकि हमारे बच्चे को भी जान बने उसकी, एक फितरी सी चीजें होती है। हमें तो ऐसे वक्तों में कितनी ज्यादा नवाजशों का और कितनी ज्यादा अप्रिसिएशन का गुमान होता है। आप बीबी मरियम पे सोचिए, आमतौर पे शौहर जो होते हैं ऐसे मौके पे बहुत साथ देते हैं, अपनी माँ साथ देती है, सास साथ देती है, दोस्तें सहेलियाँ सब कह देती हैं कोई वक्त हुआ तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, और फिर उसके बाद मुबारकबाद दें और खुशखबरियाँ और कान लगे। बीबी मरियम को क्या गम आ रहे होंगे कि बच्चा तो पैदा हो गया, अब करूँगी क्या, लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, तो इतना बड़ा फितना मेरे ऊपर आने वाला है आजमाइश मेरे दीन की, तो बेहतर है कि मैं इससे पहले मर जाती और लोगों को मैं याद ही न रहती। ये मौत नहीं है, यानी ये इसको कोई मौत की तमन्ना ना कि आज भी कोई इस तरह की कर ले, मकसद ये है कि ऐसी जबरदस्त आजमाइश से अल्लाह ताला मुझे आराम से गुजार दे और मुझे इसमें आफियत दे दे। अभी ये बात हो रही थी, खुशखबरियां भी फिर साथ ही आने लगती हैं। फनादा हमें तहतिहा, तो इसने पुकारा उसके नीचे से। अब किसने पुकारा? बास लोग कहते हैं कि ये फरिश्ता था जिसने उनको पहले भी आवाज दी थी। और मिन तहतिहा से मुराद क्या लिया गया कि हजरत मरियम निस्बतन बुलंद जगह पे होंगी और फरिश्ता जरा नशेब में होगा, क्योंकि वजह अमल के वक्त फरिश्ते का बिल्कुल करीब रहना भी मुनासिब नहीं था। ठीक है, इसी तरह एक और किरत में मन तहतहा भी आया, यानी उसे पुकारा उसने जो इसके नीचे था। तो बाज कहते हैं कि विलादत के फौरन बाद बच्चा बोल बोटा, ये भी मानी लिया गया, तहता हाल से मुराद बच्चा। ठीक है, क्योंकि अगर उस वक्त हजरत ईसा ने कलाम ना किया होता तो बीबी मरियम को कैसे यकीन आता कि ये बच्चा लोगों के सवालों का भी जवाब देगा जो बच्चे को लेकर जा रही, क्योंकि आगे पढ़ेंगे ना कि वो कहती हैं कि अच्छा भी इससे पूछ लो। तो ये मानी ज्यादा मफहूम है, वल्लाहु आलम, के बच्चे ने पुकार दिया, क्या कहा, अल्लाह तहजनी, क्या आप गमगीन ना हो। बच्चे ने अपनी माँ को तसल्ली दे दी, आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा। कद जाला रब्बुकी तहतकी सरिया, देखिए आपके रब ने आपके कदमों के नीचे एक चश्मा रवा कर दिया। ये है अल्लाह के इंतजाम, एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर बन गया। सुभान अल्लाह, पानी भी आ गया, क्योंकि ऐसे वक्त में पानी की भी जरूरत होती है, और पानी खुद नहीं था तो अल्लाह ने चश्मा दिया। जो सरिया है ये यहाँ ख़ास तौर पे चश्मे के लिए कैसे आया कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा शिद्दत से निकलना, जैसे चश्मा होता है तो फूटता है ना जोश के साथ, बिल्कुल उसी तरह से ये लफ्ज़ इधर आता है कि अल्लाह ताला ने इधर पानी का एक जारी चश्मा जारी कर दिया। बहुत सी इलाइक, और हिलाओ अपनी तरफ भी, जिस इन नखलती, खजूर के तने को, खजूर के तने को हलाओ, तो साकित अली की रोता बन जनीया, तो वह आप पर पकी हुई ताज़ा खजूरें गिराएगा। सुभान अल्लाह, पहली बात देखिए इसमें हरकत की बात है। ऐसे वक्त में औरत को एक तरीका सिखाया गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको अगर हाथ में लिया जाए तो पैदाइश में आसानी होगी। दूसरी बात देखिए, हरकत में बरकत है, खुद से सब कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है, असबाब इस्तेमाल करो। तीसरी बात इस आयत से बड़ी खूबसूरत पता चलती है कि हजरत ईसा की पैदाइश जब हुई थी तो ये खजूरों के पकने का मौसम था, और ये सब जानते हैं कि खजूरें 25 दिसंबर को नहीं पकती, गर्मियों में पकती हैं। यानी ये दलील है कि 25 दिसंबर को ये जो मैरी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस करते हैं वो दुरुस्त ही नहीं, क्योंकि हजरत ईसा तो उस दिन पैदा नहीं हुए थे। क्या फरमाया, फकुली वशरबी, खाओ और पियो, वकर्री आईना, और अपनी आंखों को ठंडा कीजिए। ये है अल्लाह ताला के इंतजामात। इस आयत पे मुफसरीन कहते हैं कि खाने पीने से खुशी मिलती है। कुछ कहते हैं ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खाएं कि ना खाएं, पिए कि ना पिए, फर्क पड़ता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहे कुली वशरबी वकर्री आईना, खाओ और पियो और अपनी आंखों को ठंडा करो। दूसरी बात इससे क्या पता चलती है कि हालात का मुकाबला करना चाहिए। और अगली बात इससे पता चलती है खजूर की तासीर। आज भी ये रिसर्च से साबित है कि खजूर बेहतरीन खाना है, और वाकई जब खजूर की आदत हो जाती है तो इंसान खजूर को मिस करता है, इंस्टेंट एनर्जी है। खजूर के बारे में बहुत कुछ आता है, यानी इसमें फ्रक्टोज भी होता है, शुगर भी होती है, जूद हजम होती है, और खजूर हो जिसके बारे में, उसके बारे में हदीस में भी आता है, सही मुस्लिम की एक रिवायत का खुलासा है कि जिसके घर में खजूर है वो घर वाले कभी भूखे नहीं रहेंगे। और कुछ ना हो तो आप यही खा सकते हैं, और उसके साथ ही आपको ताकत भी मिल जाती है। कभी किसी की शुगर लो हो रही हो या उसको वीकनेस फील हो रही हो तो खजूर खाना बेहतरीन चीज़ है। हजरत मरियम ने ये सब कुछ देखा, बच्चा भी बोला, चश्मा जारी हो गया, खजूर के सूखे तने को हिलाया, ताज़ा पकी हुई खजूरें आ गईं। अब ये सब कुछ देखकर इनके अंदर हालात का मुकाबला करना इसकी जरूरत पैदा हो गई। तो उन्होंने फिर सोचा कि अब बच्चे को इधर लेके क्या चलना है, चलो चलती हूँ। कहा ठीक है चलते हैं, लेकिन याद रखना, फइम्मत अरयिन्ना मिनल बशरिया हदन। और अगर आप देखें किसी आदमी को और वो आपसे ये पूछे कि ये कौन है, किसका बच्चा है, इसको कहाँ से लाई हो, फकूली नी नजर तुले रहमानी सौमा, तो आप इससे इशारे से कह दें कि मैंने नजर मानी है रहमान के लिए रोजे की, लिहाजा फलन उकल्लिमल यौम इंसिया, बस आज मैं नहीं बात करूंगी किसी इंसान से। इस एक आयत में भी बहुत सारी सीखने की चीजें हैं। पहली बात यह है, आने वाले हालात के लिए पहले से तैयार किया जा रहा है। बच्चियों को भी जिंदगी में जो चेंजेस आती हैं शादी के बाद या बच्चे के बाद, उसके लिए जहनी तौर पर तैयार कर देना चाहिए। बाज़ दफ़ा पहले झूठी तसल्लियाँ दी जाती हैं और बाद में फिर और लड़कियाँ रोने वाली हो जाती हैं, उनसे एक बच्चा नहीं संभलता। तो अच्छे तरीके से पहले से ही ये सब चीज़ें बता देनी चाहिए। दूसरी बात, इससे क्या पता चलती है कि रोज़े की मन्नत या नियत ये क्या चीज़ है। देखिए रोज़ा तो वैसे ही अच्छी चीज़ है। अब आप कहेंगे कि नफास के दिन थे तो रोज़ा कैसे रखा, तो याद रखिए कि पिछले शरीयतों में रोज़े के अहकामात मुख्तलिफ थे, आज से चुप का रोज़ा भी लोग रखते थे। असल में इसमें मफहूम क्या है कि बनी इसराइल चुप का रोज़ा रखते थे, और दूसरी ये बात यहाँ ये सिखा दी गई कि जब आपको लगे कि आपके बोलने से कोई समझेगा नहीं तो खामोशी रहे बेहतर है। क्यों ज़ाया करें आपको, आपके आगे हम अपनी एनर्जी क्यों ज़ाया करें, भाई आप बोल लें। और जब बंदे पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लग जाए कि जिसमें कोई बात असल ही ना हो तो खामोश रहना चाहिए। थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो ना कि बात ऐसे नहीं थी वैसे थी तो बोल दें, तरीके से बात करें, ये भी मसनून है कि अपना दिफा करना चाहिए। लेकिन बात ही ऐसी हो कि जिसको सुनकर इंसान हैरान हो जाए तो फिर खामोशी बेहतर होती है। जब हम बोलते हैं ना तो अल्लाह हमारे बस पे लोगों को डाल देता है, जब हम खामोश होते हैं अल्लाह हमारी मदद करता है। यही चीज़ हमने अभी हज़रत यूसुफ के किस्से में सीखी थी, यही चीज़ हमें यहाँ हज़रत मरियम की दिख रही है, और 18th पारे में हम हज़रत आयशा की भी यही दिखेंगे चीज़ कि बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? सब्र, तहम्मुल। हम तो सर से पाँव तक भड़क उठते हैं, हम कहते हैं मेरे तो तन बदन में आग लग गई, सर से पाँव तक लगी, पाँव को लगी, सर के अंदर गई, इस तरह की बातें। इसलिए इंसान को थोड़ा सा तहम्मुल की ज़रूरत है, खामोश रहें। आप देखिए कि जब वो खामोश रहीं, अल्लाह की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को कबूल किया, हम होते कहते लो मैं चुप रहूंगी, ये तो मेरी बात नहीं मानेगी। अच्छा, हम किसी की बात सुनने को भी नहीं तैयार होते। कभी हम किसी के पास जाते हैं ना, कोई बात कहते हैं, अगला बंदा कोई बात कहता तो हम आगे से फिर उसकी और एक बात कर देंगे, यानी हम सुनना नहीं चाह रहे होते, सिर्फ सुनाना चाह रहे होते हैं। हजरत मरियम को जब अल्लाह ने कह दिया कि ना बोलना, फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, अच्छा यहाँ थोड़ा सा तकाबुल कर लेते हैं, हजरत जकरिया को भी खुशखबरी मिली बेटे की, उनको क्या कहा, तुम लोगों से बात नहीं कर सकते, इधर क्या है, इनको भी खुशखबरी मिली, कहा कि तुम भी लोगों से खामोश रहो। हजरत जकरिया की बात, जो बच्चे की पैदाइश थी, वो खुशी की थी ना, वो एक किस्म का आप कह सकते हैं सब्र का फल था। हजरत मरियम का ये बच्चा क्या था, आजमाइश थी। दोनों हालात में खामोश रहो, ये मतलब है, खुशी मिले या गम मिले, आप पे से बाहर ना हो जाओ, कपड़ों से ना बाहर निकलने लगो। हमारा हाल यह कि थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हम उछल उछल पड़ते हैं, सारी दुनिया को सुना रहे होते हैं हमारे साथ अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, और जब गम पड़ता है तो भी चुप नहीं रहते। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला जो डालता है फिर वो सब्र भी देता है। अब देखिए बीबी मरियम के साथ क्या होता है, कहा गया था जाओ तो चली गई। आयत 27, फतत बिही कौमह तहमिलुहु, फिर वो ले आई इसको उठाए हुए अपनी कौम के पास, बड़े हौसले से न्यू बॉर्न बेबी को उठा लिया। पहले से बोलना देख चुकी थी इसलिए मुतमईन भी थी, और उनको पता था कि अल्लाह ताला मेरी बेगुनाही साबित करेगा। कालू या मरियमो, लोगों ने कहा मरियम, लक़द जीति शैयन फरिया, यकीन तुम एक तूफान घड़ लाई हो। यानी तुमने तो बड़ी अनहोनी बात कर दी, ये तुम्हें क्या हो गया? जैसे आप कहते हैं ना कि तरह तरह की बातें करना, जितने मुंह उतनी बातें, कोई कुछ बोला कोई कुछ बोला, इस तरह हजरत मरियम के बारे में ये लोग बोलने लगे। अब यहाँ लफ्ज़ नया है फरिया, तो फरी कहते हैं अरबी जबान में काटने को और फाड़ने को, जिस काम या चीज के जाहिर होने में गैर मामूली काट छांट हो उसे फरी कहते हैं। चमड़े के काटने के लिए भी यही लफ्ज आता है, आप पीछे ये लफ्ज पढ़ चुके हैं, नया नहीं है, इफ्तरा का लफ्ज, बस उसमें ता एक्स्ट्रा लग जाती है। तो हर अमरे अजीम को फरी कहा जाता है। अच्छाई के एतबार से हो तो अजीम होगी, बुराई के एतबार से होगी तो बुरे मानों में होगी। तो यहां मुराद क्या है? ऐसी चीज के लिए जो मारूफ हो अपनी शिफात और बुराई के मानों में भी गैर मामूली और बड़ी चीज समझी जाए। तो गवाह के बड़ी अजीब बात ले आई हो, यानी कभी ये हुआ आज तक जो तुम कह रही हो कि इस बच्चे से पूछो और बच्चे की बात कहने लगे, तो बहुत बड़ा पाप तुमने कर दिया। या उख्त हारून माँ का ना अबू किमरा सऊइन, ए हारून की बहन, ना तो तुम्हारा वालिद बुरा आदमी था, वमा का ना तुम मुगी बगीजा, और ना ही तुम्हारी वालदा बदकार थी। देखिए लोगों की आदत होती है ना, ताने देने शुरू होते हैं फिर फौरन माँ बहन पे पहुंच जाते हैं। हजरत मरियम को यहाँ हारून की बहन क्यों कहा? बास कहते हैं हो सकता है इनका भाई भी कोई हारून हो, लेकिन ज्यादा राय क्या है कि ये हजरत हारून की नस्ल से थी और वो एक बहुत बड़े बुजुर्ग और एक उनके खानदान के बड़े शख्स के नाम से मशहूर थे। तो गोया के कहा कि तुमने उनके नाम पर क्या ठप्पा लगा दिया। फाशारत इलैही, तो इसने इस बच्चे की तरफ इशारा किया। कालु कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, लोगों ने कहा हम इससे कैसे बात करें जो गोद में पड़ा बच्चा है। सभी या कलस यहाँ पहुंचा, यहाँ आया ये लफ्ज कि ये तो बच्चा है अभी, इसमें तो बचपना है, बचपने का मानी लिख सकते हैं। सभी है, अभी तो बहुत ही न्यू बॉर्न बेबी है, ये कभी बोलता है? लेकिन बच्चा बोल उठा। या आयत 30 का हमेशा मैं टॉपिक यही बोल देती हूँ, बच्चा बोल उठा कैसे? काला इन्नी अब्दुल्लाह, उस बच्चे ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताबा, उसने मुझे किताब दी। वजालनी नबीया, और मुझे नबी बनाया। तीन बातें, चौथी भी लिखिए, वजालनी मुबारक नई नमा खुंतु, और उसने मुझे बाबरकत बनाया जहां कहीं भी मैं हूं। वउसानी बिस्सलात, और मुझे इसने ताकीद की है नमाज की। वज़कती, और जक़ात की। मादुम तु हैया, जब तक के मैं जिंदा रहूं। गिन रहे हैं चीजों को, अगली आयत पे फिर और चीजें। आयत 32, वबर्रम बी वालिदती, और इसने मुझे बनाया भलाई करने वाला अपनी माँ के साथ। पीछे क्या आया था? हजरत याहिया के नाम पे वालिदैन का बात आई थी, वहां माँ बाप थे। यहाँ देखिए कि अल्लाह को गलती नहीं लगती कि वो माँ बाप की बजाय या माँ का लिखे। हजरत ईसा की जो के सिर्फ माँ थी, तो बर्रम और बिर या बर कहते ही माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक को है, गो कि ये नेकियों के मानों में भी इस्तेमाल होता है। वलम ये जल नी जब बारन शकिया, और इसने मुझे तुंदखू बदबخت नहीं बनाया। ये हजरत ईसा का कलाम है, आगे कंटिन्यू होता है 33 में। वस्सलामु अलैय यौम वलिदतु, और सलाम है मुझ पर जिस दिन मैं जना गया। व यौम अमूतु, और जिस दिन मैं मरूंगा। व यौम उबअसु हैया, और जिस दिन मुझे उठाया जाएगा जिंदा करके। बता सकते हैं कि पीछे हजरत याहिया के मामले में क्या लफ्ज थे? मिलते हुए थे ना, ये क्या कह रहे हैं? वस्सलामु अलैया, मुझ पे सलाम है। क्या उस दिन वहां क्या था? अल्लाह का सलाम है। ये दोनों बचपन में दोस्त थे ना, 6 महीने का फर्क था, तो इकट्ठे खेल रहे थे। तो एक दिन इन दोनों ने कहा कि मैं आला हूँ। उन्होंने कहा भाई तुम कैसे आला हो? कहा देखो मेरे ऊपर यौम में जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी भी सलामती है, मरूंगा और जिस दिन उठाया जाऊंगा। हजरत याहिया ने कहा नहीं मैं तुमसे आला हूँ। क्यों? तुम तो खुद अपने ऊपर सलाम भेज रहे हो सलामती, मेरे ऊपर तो अल्लाह ने भेजी थी जी। और आप देखिए ये तीन वक्त इंसान के लिए बहुत घबराहट के होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो हम बाहर ये देखते हैं ना कि माँ को तकलीफ हो रही है, बच्चे को भी उतनी होती है। ये वो तकलीफ है जो हम सह चुके हैं, लेकिन हम में से किसी को याद नहीं है। अल्लाह बुलाता है, इसीलिए बच्चे खामोश होते हैं, वरना आते ही शिकवा शुरू कर दें, इतनी मुश्किल से दुनिया में आया हूँ। अब जब माँ के पेट में बच्चा 9 महीने रहता है, तो उधर दिल लग चुका होता है ना, तो वहां से निकलना नहीं चाहता। उसको जो माँ की गोद में मजा है, ये दुनिया के थपेड़ों में आएगा, वो रो रहा होता है। अब दुनिया में आए, कुछ अरसा रहे, जरा दोस्तियां हुई, मोहब्बतें हुई, अपने मिले, फिर दिल दुनिया में लग गया तो यहां से जाना पड़ा। इतनी बड़ी दुनिया से फिर छोटी सी कब्र में डाल दिया, पहले माँ का पेट एक कब्र थी, दुनिया में आ गए, अब दुनिया से फिर कब्र में गए, ये भी वक्त बड़ी तकलीफ का है। थोड़ी सी कब्र में जाके शनासाई होगी कि चलो ठीक है, जहां भी पड़े हैं ठीक है, तो कहा जाएगा अब उबस है या अब वहां से भी निकाला। तो ये वहशत के तीन वक्त हैं, और आप देखिए हम सब पर इसमें से एक वक्त अभी गुजरा है, दो भी हमारे ऊपर आने वाले हैं। कितनी जरूरत है हम सब को अल्लाह से सलामतियां मांगने की, क्योंकि मौत के फितने इतने शदीद फितने हैं कि बाज दफा लोग उसकी तकलीफ से घबरा कर खुदकुशी तक कर लेते हैं। अल्लाह के नबी के दौर में लोगों ने कहा देख लो जिसने जिंदा जन्नती को देखना है। एक शख्स था जिसको जंग में जख्म लगे थे तो तड़प रहा था, तो लोगों ने कहा शहीद हो जाएगा जन्नती है, तो आपने कहा नहीं। और देखा थोड़ी देर बाद लोगों ने कि अपनी दर्द की शिद्दत की वजह से करीब रखा हुआ हथियार लेके उसने खुद को मार दिया। तो मौत बड़ी अच्छी मांगनी चाहिए, और दोबारा उठे जाने का दिन तो बहुत ही शिद्दत का दिन होगा। तो लिहाजा इन्होंने सलामती की बातें की। टोटल कितनी खूबियां पढ़ी हजरत ईसा की आपने? 8 से 9 है। अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला, किताब मिली, नबी बनाया, बरकत वाला हूँ, नमाज की वसीयत, जकात की वसीयत मरते दम तक, माँ के साथ भलाई करने वाला, जब्बार और शकी नहीं हो, और मुझ पे सलाम है पैदा होने मरने के, तकरीबन 12 चीज़ें बनती हैं। इतना प्यारा कलाम था ईसा का, लोगों ने क्या बना दिया, इन्नी अब्दुल्ला को इन्नी इब्नुल्ला। देखिए लफ्ज़ अब्दुल्ला को बिन में बदल दिया लोगों ने। अल्लाह ताला कहता है ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये है ईसा इब्न मरियम, कौलुल हक अल्लज़ी फीही यमतरून, ये है वो हक बात जिसके बारे में ये लोग शक करते हैं। कौन करते थे? अल्लाह के नबी के दौर के यहूद और नसारा करते थे, और आज तो और भी ज्यादा करते हैं। तो अब अल्लाह ताला अकीदे की इस्लाह फरमाते हैं हम सब के, आयत 35 में, मा काना लिल्लाहि यत्तखिज़ मिन वलदिन, अल्लाह के तो शायान शान नहीं कि वो किसी को बेटा बनाए। सुबहानहू, वो तो इससे पाक है, इज़ा कदा अमरन फ़इन्नमा यकूलु लहू कुन फ़यकून, बस वो जब किसी काम का फैसला करता है तो इसे कहता है कि हो जा, और वो काम जो है वो हो जाता है। तो गोया कि आप कह सकते हैं हजरत ईसा की विलादत में बाप का जो हिस्सा था ना, वो अल्लाह के एक हरफे कुन के जरिए पूरा हुआ, बाकी सारा अमल फितरी तौर पर तबई तरीके से हुआ। इतने ही वक्त जितना वक्त बच्चा पेट में रहता है माँ के उतना ही रहा, और इसीलिए आपको होता है कि हजरत ईसा का लकब क्या है, कलीमत उम्मीन हो। सूरह आल इमरान 45 में हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह का खास कलम है। दुनिया की हर चीज़ ही अल्लाह के कलमे से होती है, लेकिन इसमें तो सिर्फ अल्लाह का कलमा है कुन ही दिखता है। तो लिहाजा फरमाए व इन अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, ये भी हजरत ईसा के कलाम की कंटिन्यूएशन है। ये जो बीच में दो आयतें गुजरी है ना, इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में कर दें। पिछली बातों के साथ हजरत ईसा और भी अपने लिए कहते हैं कि यकीनन अल्लाह ही मेरा रब है, वह रब्बुकुम, और तुम्हारा रब भी, फाबुदूह, बस तुम उसकी बंदगी करो, हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। ये कौन सा रास्ता है? इस्लाम। इस्लाम का यही नजरिया कि हजरत ईसा ये थे। लेकिन इसके बाद लोगों ने क्या किया, आयत 37, फख्तलफ अल अहज़ाब मिन बैनिहिम, फिर इख्तलाफात पैदा कर लिए मुख्तलिफ गिरोहों ने आपस में। कौन से? जो हजरत ईसा का ये सारा मंजर देख चुके थे, इशारा ईसाइयों के मुख्तलिफ कबाइल की तरफ है। फवैलु लिल्लज़ीना कफरू, तो बर्बादी है इन काफिरों के लिए उस बड़े दिन की पेशी से जो मिन मशहदी यौमिन अजीम, हाजिरी के दिन बहुत बड़े। ये जो लफ्ज है ना मशहद, मफअल का वजन है, ज़र्ब मकान है, हाजिर होने की जगह, जैसे लफ्ज मस्जिद है ना, मंजर मकतब, तो मशहद शाहिदा, क्यामत के नामों में से ये नाम है, एक और नाम आगे आने लगा, यानी क्यामत के दिन जब सब लोग गवाहियां दे रहे होंगे, उस दिन उन लोगों को जिन्होंने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया, उनके लिए बहुत गड़बड़ होगी। सब हकायक खुल के सामने आ जाएंगे, सबके मन घड़त अकीदे, उनकी बातें सारी उनको समझ आएंगी। अस्मि बिहिम वअबसिर, क्या ही अच्छा वो सुन रहे होंगे और क्या ही अच्छा वो देख रहे होंगे। आज तक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहते ना हजरत ईसा की रियलिटी का, लेकिन क्यामत के दिन खूब सुन रहे होंगे। यौम यातूना लाकिन ज़ालिमून अल यौम फी दलाल मुबीन, जिस दिन वो हमारे पास आएंगे, लेकिन आज ये जालिम खुली गुमराही में मुब्तला है। इशारा है कि क़यामत के दिन इनकी आंखें खुल जाएंगी और हज़रत ईसा की हकीकत जब देखेंगे फिर इनको अफसोस होगा कि हमने अपनी ज़िंदगियां एक गलत अकीदे पे गुजार दी। लिहाजा व अनज़िरहुम यौमल हसरत इज़ क़ुदियल अम्र। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको खबरदार कर दीजिए उस यौम हसरत से जब हर मामले का फैसला कर दिया जाएगा। वहुम फी गफलतिन वहुम ला युमिनून, अलबत्ता ये लोग गफलत में मुबतला हैं, बस ये ईमान नहीं लाएंगे। ये है क़यामत का दूसरा नाम, यौमल हसरा। क़यामत के दिन किस बात पे हसरत होगी? हर बात पे हसरत होगी। हत्ता कि यहाँ तक आता है कि जन्नत में जाने वालों को भी हसरत होगी उन लम्हों पे जो अल्लाह की याद के बगैर गुजार दिए। आज कितना वक्त हम ज़ाया करते हैं, खुल के ज़ाया करते हैं, सोचते भी कम है। क़यामत के दिन हसरत होगी। इस हदीस में आता है हर वो महफिल जिसमें अल्लाह का जिक्र ना किया जाए क़यामत के दिन लोगों के लिए हसरत का जरिया होगी। हम बहुत सारी सजाते हैं महफिलें लेकिन अल्लाह का जिक्र करते नहीं, अब ऐसे वक्त पे तो हम नहीं कर सकते, इससे क्या फ़ायदा होगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि जिंदगी झूठ पे गुजारी होगी, नाफरमानी का हर काम, उससे क़यामत के दिन हसरत होगा। इस पे लेक्चर भी कल परसों भी एक लेक्चर इस पे हुआ लेकिन इस पे पहले से भी मौजूद है कि क़यामत के दिन की हसरतों से बचना। अगर हम उसके अंदर से पॉइंट से मैंने काफ़ी चीज़ें जमा करके लिखवाई थी कि क़यामत के दिन क्या क्या हसरत होगी। सबसे बड़ा रिग्रेट तो यही होगा कि ज़िंदगी ज़ाया कर दी। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना नहनु नरिसुल अर्दा व मन अलैहा, यकीनन हम ही वारिस होंगे ज़मीन के और जो कोई इस पर मौजूद है उसके भी। व इलैना युरजाउन, और ये सब हमारी तरफ लौटाए जाएंगे। इस दुनिया की ज़िंदगी की खेल में खोने वालों को बता दो कि ये दुनिया असली नहीं है, असल में इसके अंदर तुम जो खो गए हो कल क़यामत के दिन तुम्हें पता लग जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने दो कहानियाँ पूरी की हैं, दोनों के अंदर अनयूजल हालात हैं, दोनों में बच्चों की बात है और दोनों के अंदर आप देखिए कि औरतों का तذکرہ भी है, फैमिली लाइफ की बातें। अगर ये सारी आयात हम नॉन मुस्लिम साथियों के सामने रखें तो उनको यकीनन शौक पैदा होता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानने का। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस खूबसूरत इल्म को आम करने वाला बना दे और हम इन सारी बातों में जो कुछ बातें अमल की थी उस पर अमल भी कर सकें और जिन बातों से अकायद की इस्लाह हो सकती है उसके ऊपर हम इस्लाह करें। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मुसलमानों के कई ऐसे फ़िरके हैं कि जो इन बातों में गलत हो गए, जिसमें एक बहुत ही मारूफ फ़िरका मौजूद है कि जो हज़रत ईसा के दोबारा आने का मुनकर है और उनके ख्याल में हज़रत ईसा की मसीह जो है वो आ चुके। अल्लाह ताला से दुआ कि सब के अकायद की इस्लाह फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरि खल्क़िही व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमुर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।